ओम शांति। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय भ्राता राम लोचन जी पहुंच चुके हैं, तो हम सभी एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी को रामलोचन भाई जी के परिचय में मैं आपको बताने जा रही हूं कि रामलोचन भाई जी लौकिक जन्म स्थान इनका यूपी अयोध्या से हैं। 1972 में कलकत्ता से इन्होंने ज्ञान लिया और तभी से ही ये समर्पित जीवन जीकर अपनी सेवाएं जो हैं वो बाबा के घर में दे रहे हैं। बहुत सारे देश विदेश में जाकर के भी इन्होंने सेवाएं की और बहुत सारी आत्माओं को बाबा के साथ मिलाया, उनका बच्चा बनाया, उनके जीवन में परिवर्तन लाया। और रामलोचन भाई जी जितने भी वीआईपीज यहाँ पर आते हैं उन वीआईपीज की सेवा में सदा ही सेवारत रहते हैं। और आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम भ्राता जी के द्वारा संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन कैसे होगा उस विषय पर हम आदरणीय भ्राता जी के द्वारा ये क्लास सुनेंगे। और आप सभी से यही आशा करती हूँ कि आप इनके द्वारा बोले गए एक एक वचन को अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी बाबा के इतने अमूल्य रत्न हैं, इतने महान बच्चे हैं कि स्वयं भगवान ने आपको विश्व परिवर्तन के लिए चुना है। जिस परिवर्तन को दुनिया असंभव समझती है लेकिन बाप दादा ने आप आत्मा में वो विशेषता वो गुण देखा कि यही मेरे बच्चे विश्व के परिवर्तन के निमित्त बन सकते हैं। और बाबा ने आपको सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया। तो संसार परिवर्तन में सबसे बड़ा महत्व है अपना संस्कार परिवर्तन, क्योंकि बाप दादा ने हम आप आत्माओं में प्रेजेंट के संस्कार नहीं देखे हैं, वर्तमान के संस्कार को नहीं देखा है। बाबा हमारा भविष्य के संस्कार को देखा है। तो हम इस समय संगम युग पर हैं, दुनिया कलयुगी है, कलयुग से परिवर्तन होकर संगम पर आए हैं। तो हमारे अभी संस्कार भी संगम के हैं, कुछ ब्राह्मण के हैं, कुछ पुरानी दुनिया के भी हैं। लेकिन बाबा चाहता है कि टोटल संस्कार ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। अगर हम बदल गए, हमारे संस्कार बदल गए, तो संसार स्वतः बदल जाएगा। कैसे? अगर हम बदले तो हमारी स्थिति, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि से जो वाइब्रेशंस फैलेंगे, इससे मनुष्य आत्माएं भी, प्रकृति भी और जानवर भी, ये सब बदलते जाएंगे। जो सतयुग में आने लायक नहीं है वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, और जो अपनी नई दुनिया में आने लायक हैं वो आपके वाइब्रेशन से बदल जाएंगे। तो मुख्य है हमें अपने संस्कारों को चेंज करना, बाप समान संस्कार बनाना। तो पुराने संस्कार को चेंज करके नए संस्कार अर्थात बाप समान संस्कार बनाने के लिए 5 बातों पर अटेंशन देना है। उन 5 बातों में चाहे कोई एक भी पूरा अटेंशन दे दे तो 5 आ जाएंगे। पहला है मर्जीवा जीवन की स्मृति। हम लौकिक से मर के अलौकिक बने हैं। मर्जीवा जीवन की स्मृति। दूसरा है ज्ञान योग का मनन चिंतन और प्रैक्टिस। सिर्फ मनन चिंतन नहीं, प्रैक्टिस। तीसरी बात है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग। चौथा है अमृत बेले उठकर बाप से दृढ़ प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा परिवर्तन का आधार है। और 5वां है अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहना। अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहना। अब ये 5 बातें अगर आप सारे दिन में अपने जीवन में लाएं तो संस्कार जल्दी बदल जाएंगे। पहली बात है मर्जीवा जीवन की स्मृति। हम आप पुरानी दुनिया से मर कर संगम युग पर आए हैं। शरीर वही है, परिवार वही है, दुनिया वही है, सिर्फ स्मृति से मरे हैं कि हम ये नहीं ये हैं। तो देखो पुरानी दुनिया में जब कोई मर के नया जन्म लेता है तो तीन बातें चेंज होती हैं, और वही तीन बातें हमें अब चेंज करनी है। पहली बात, जब कोई मर के नया जन्म लेता है तो उसके माँ बाप और परिवार बदल जाते हैं। जहां जन्म लिया वो परिवार हो गया। दूसरी बात, स्थान बदल जाता है। जहां से शरीर छोड़ा और जहां जन्म लिया उस स्थान पर जाते हैं। तो तीसरी बात है, धर्म बदल जाता है। जिस घराने में गए वहां का जो देह का धर्म था वो धर्म चलता है। अब आप देखो कि क्या मेरे संस्कार अर्थात मैं जो मरजीवा बना, क्या ये तीनों बातें मरजीवा जन्म के संस्कार बस हैं? जैसे पहली बात है कि मर करके जब नया जन्म लेते हैं तो परिवार बदलता है, माँ बाप परिवार बदल जाते हैं। आप ये चेक करो, सारा दिन आपको क्या याद रहता है? जब आप ब्राह्मण बने तो आपका माँ बाप परिवार कौन बना? बाप और दादा। मेरे सर्व संबंधी मात पिता बाप दादा है। अब यहीं से आप अपने पुरुषार्थ को चेक करो कि सारा दिन हम लौकिक परिवार को देखते हुए, धंधा करते हुए, सर्विस करते हुए जिनको मैं देखता हूँ, उनको देखकर क्या स्मृति आती है? अगर आपने लौकिक बेटी को, बेटे को, मान लो आपने बेटी को बेटी की दृष्टि से देखा कि ये मेरी बेटी है, उस समय क्या आप ब्राह्मण हैं? क्या बीके हैं उस समय आप? सोचो, उस समय तो आप पुरानी दुनिया के, तो जो पुरानी दुनिया का होता है और उससे आप मर गए हैं और फिर उस स्मृति में जीते हैं, तो पुरानी दुनिया में कहा जाता है जो मर के जिंदा हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूत। ये भूत है। तो आप सोचो, उस समय हम क्या हैं? भूत हैं या ब्राह्मण हैं? चेक करो। है बिल्कुल छोटी सी बात, लेकिन ये फाउंडेशन है। इसके बिना भले बड़ी बड़ी क्लासेस कर लो, हम फरिश्ता बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। अगर फाउंडेशन नहीं आपने पक्का किया तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? बनना आपको फरिश्ता है, बनना बाप समान है, लेकिन फाउंडेशन पक्का करो। आप जब भी लौकिक परिवार में किसी को भी देखते हो, ऊपर के संबंध से तो जो है वही कहेंगे, लेकिन अंदर स्मृति रहे, ये भी ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। जानता नहीं है, अज्ञानी है, लेकिन है तो सही ना। आप तो जानते हो, वो नहीं जानता। आप तो जानते हो, या शिव बाबा की संतान आत्मा है। चलो आत्मा ना देख पाओ, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ये तो स्मृति में ला सकते हो ना। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी स्मृति में लाया तो आपका दृष्टि वृत्ति कृति सब चेंज हो जाएगी। सब आध्यात्मिक बन जाएगी, सब अलौकिक बन जाएगी। तो सबसे पहले ये चेक करो कि मैं जिसको भी देखता हूं या देखती हूं, ये ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है, या शिव बाबा की संतान आत्मा है, मेरा मीठा भाई है। ये पक्का करो पहले। ये अभी से बैठे बैठे अभ्यास को बढ़ाओ। अभी भी हम सब एक दूसरे को भल देखने में तो शरीर सामने आ रहा है, लेकिन अंदर क्या है? ये बहन जी हैं, भाई जी हैं, या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है? ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा की याद से आपके अंदर ब्रह्मा को फॉलो करने का संकल्प उत्पन्न होगा। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने का संकल्प उत्पन्न होगा। फॉलो फादर करने लगेंगे और इसका फायदा ब्रह्मा माँ कहो या बाप कहो, उसका आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। और जहां आशीर्वाद मिलने लगा, वहां आपका पुरुषार्थ बढ़ने लगेगा। आप अपनी हिम्मत से पुरुषार्थ नहीं बढ़ा सकते हो, बाप की मदद आवश्यक है। बाप के मदद के बिना हम रावण को मार नहीं पाएंगे। और मदद मिलेगी आज्ञाकारी बनने से, आशीर्वाद मिलेगा आज्ञाकारी बनने से। पहली बात। दूसरी बात है, स्थान चेंज हो जाता है। जब आप मर के संगम युग पर आ गए, ब्राह्मण बन गए, तो जहां आपका लौकिक निवास है, जहां से आप आए हैं, आपको क्या याद रहता है? मैं आंध्र प्रदेश का हूं, राजस्थान का हूं, या कहां का हूं, क्या याद रहता है सारा दिन? सोचो ये बात। ब्राह्मणों का असली स्थान कौन सा है? या मधुबन, या सूक्ष्म वतन, या मूल वतन? तीन है। आप सोचो सारा दिन क्या स्मृति में रहता है? मैं आंध्रा की निवासी हूं, फलानी जगह का निवासी हूं, या मेरा असली घर मधुबन है, या सूक्ष्म वतन है, या मूल वतन है? क्या याद रहता है? सोचो इस चीज को। बिना इसके आप आगे बढ़ना मुश्किल है। पहले स्मृति के फाउंडेशन को पक्का करो। फाउंडेशन यही है, ये पक्का होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात है धर्म। धर्म अर्थात धारणा। जब आप ब्राह्मण बने तो क्या पिछले जन्म की ही धारणाओं से चल रहे हैं, या ब्राह्मण की धारणा में चल रहे? ब्राह्मण के नियम मर्यादा प्रमाण चल रहे हैं, या पुराने नियम मर्यादा प्रमाण चल रहे हैं? चेक करो। अगर इन तीनों को बदल लिया आपने, तो आपका पुरुषार्थ बढ़ने लगेगा। अगर इनको नहीं चेंज कर पाए, तो आपका पुरुषार्थ नहीं बढ़ पाएगा। आप आओगे, योग में बैठोगे, आधा घंटा आपका युद्ध में ही चला जाएगा, योग लगेगा नहीं। अगर कभी योग लग भी गया योग, तो वो आपकी मेहनत नहीं है, आपके मेहनत से योग नहीं लगा है। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। ये सब आप लोगों को अनुभव है कि कभी कभी अचानक योग इतना अच्छा लग जाता है, ना उस दिन कोई पुरुषार्थ किया है, ना कोई विशेष अटेंशन भी दिया है, लेकिन बैठो तो बस उड़ जाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमने एक बार अव्यक्त बाप दादा से पूछा था, इस तरह से कि बाबा, जो संदेशियां ध्यान में जाती हैं और आपसे मिलके आती हैं, आपसे बातचीत करती हैं, उन्होंने क्या पुण्य का काम किया है? हम क्यों नहीं ट्रांस में जा पाते? हम भी तो आपको देखें, हम भी तो आपसे मिलें। तो क्या है उन संदेशियों का जो उनसे आप मिलते हो और हमने क्या ऐसा पाप कर्म किया है, क्या ऐसा है जो मेरा ट्रांस में पार्ट नहीं है, हम आपको नहीं देख पाते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया था, अव्यक्त बाबा ने, कि बाप के लिए सभी बच्चे समान हैं। जो ध्यान में जाते हैं वो, और जो नहीं जाते हैं वो, दोनों समान हैं। तो बाबा ने बताया कि जो बच्चे ध्यान में जाते हैं वो उनकी अपनी मेहनत नहीं होती है, बाबा डोरी खींच लेता है, और जो भी सीन देखते हैं आकर के बताते हैं सेवा अर्थ। तो बाबा ने कहा जैसे संदेशी बिना मेहनत के जाते हैं और अनुभव करते हैं, आकर यहां बताते हैं, ऐसा ऐसा बाबा ने कहा है। तो ठीक इसी प्रकार आप बच्चों का भी कभी कभी बाबा ऐसा बुद्धि योग खींच लेता है जो जैसे संदेशियों का खींचा बिना मेहनत के, ऐसे आपका भी बिना मेहनत के खींच लेता है। ये बाप की मदद है, मदद है। और जो ऊंची स्थिति का अनुभव हुआ, अब बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करके इस स्थिति को प्राप्त करो। तो ये जो कभी कभी लग जाता है योग, वो आपकी मेहनत नहीं है, आपके मेहनत से नहीं लगा है, वो बाप की मदद से लगा है। बाबा ने अनुभव कराया है, अब ऐसा पुरुषार्थ करो, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है। तो ये तीन बातें पक्का कर लो, मरजीवा बनो। सारा दिन अभी भी आप यहां से क्लास से उठेंगे, अपने सेंटर के भाई बहने आए हैं, चेक करना हम उसको किस स्मृति से देख रहे हैं, फलाना भाई है क्या, ये बीके है, इस स्मृति से देख रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमार है ब्रह्मा कुमारी है इस स्मृति से देख रहे हैं, या फलाना भाई है इस स्मृति से देख रहे हैं। चेंज करो स्मृति, यहीं से शुरू करो चेंज करना, स्मृति को चेंज करो। बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा बाबा का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है, डबल फायदा है। बाबा भी याद है, आपकी तरक्की भी हो रही है, और बाबा याद होने के कारण बाप का आशीर्वाद भी मिल रहा है, फायदा ही फायदा है। दूसरी बात है, ज्ञान योग का मनन चिंतन और प्रैक्टिस। अगर ज्ञान योग का सारा दिन मनन चिंतन नहीं चलता है, आपको पहले जो बताया, अगर ये फाउंडेशन पक्का नहीं है, पहला वाला तो दिन में मनन चिंतन भी नहीं चलेगा। आज बाबा की सारी मुरली यही थी, बचपन के दिन भुला न देना। नया जीवन भूलना नहीं, अगर भूलने से कितना नुकसान होता है वो बाबा ने बताया है। तो ज्ञान योग का मनन चिंतन करो और फिर प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ मनन चिंतन करोगे, तो मनन चिंतन करने से आपको पॉइंट तो याद आ जाएगी, लेकिन वो पॉइंट आपके जीवन में प्रैक्टिकल काम नहीं करेगी। उदाहरण के रूप से मान लो आप ज्ञान योग के लिए ड्रामा का चिंतन कर रहे थे कि जो कुछ भी होता है सब ड्रामा में फिक्स है, एक्यूरेट है, अपने टाइम पर होगा, सबका पार्ट फिक्स है, सब कुछ मनन चिंतन किया। लेकिन अगर मनन चिंतन करके उठे आप और आपका मोबाइल गुम हो गया, ड्रामा लगेगा, संकल्प स्टॉप हो पाएगा? सोचो, या घर से कोई समाचार आ गया एक्सीडेंट हो गया है, क्या संकल्प ड्रामा लग पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है। बिना प्रैक्टिस किए प्रैक्टिकल नहीं आएगा। मनन चिंतन आधार है, लेकिन स्वरूप के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटी छोटी बात पर ड्रामा लगाना शुरू करो, तब बड़ी बात पर लग पाएगा। मान लो चलते फिरते किसी ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, छोटी सी बात, वहां ड्रामा लगाओ, कोई नहीं, हमने कल पहले शायद गुस्सा किया होगा इसके ऊपर, हिसाब किताब खत्म हो गया। ड्रामा में इसका पार्ट था, मजबूर था, क्योंकि पार्ट बजाना ही था, इसलिए गुस्सा किया। वहां मन को शांत कर लो और उल्टा शुभ भावना रखो, बाबा इस आत्मा को इतनी शक्ति दे दो कि ये भी आत्मा शांत स्वरूप बन जाए, ये आत्मा भी बाबा आपकी याद में रहे, इसकी भी स्थिति अच्छी हो जाए। उल्टा और उसको शुभ भावनाओं का दान दो। तो छोटी छोटी बात पर अभ्यास करोगे, चाहे ज्ञान की पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर, बिना प्रैक्टिस किए आप लोग अभी आते हो, इतने बड़े बड़े क्लासेस भाई बहनों के मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी नहीं कल भूल जाओगे। कुछ फायदा नहीं होगा। मधुबन की धरनी में आए हो, बाबा की धरनी है, यहां तो फल मिलता है ऑटोमेटिक, शांति, प्रेम, सुख, आनंद सब मिलता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो प्राप्ति होती है, लेकिन आपको फिर उसी स्थान पर जाना है जहां चारों तरफ फाइटिंग ही है, फिर वहां भूल जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, सिर्फ सुनो नहीं, सुनो जरूर, नोट भी करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, उसको अमल में लाने का पुरुषार्थ करो। तीसरी बात है ज्वालामुखी योग। बाबा ने मुरली में कहा था, जितने कड़े संस्कार हैं उतना पावरफुल योग की जरूरत है। हमारे सबके 63 जन्म के संस्कार लोहे जैसे कड़क, कोयले जैसे काली आत्मा हो गई है पुराने संस्कारों के कारण। ये आपके चेंज होंगे ही ज्वालामुखी योग से, साधारण योग से नहीं चेंज होंगे। ज्वालामुखी योग चाहिए। ज्वालामुखी योग है क्या? ज्वालामुखी योग की 3 स्टेजेस है। पहले आप फर्स्ट स्टेज से प्रैक्टिस शुरू करो। पहला है चंद्रमुखी योग, दूसरा है सूरजमुखी योग, और तीसरा है ज्वालामुखी योग। चंद्रमुखी योग अर्थात बाप और दादा दोनों की याद, अर्थात फरिश्तापन की स्थिति में स्थित रहना और बाप दादा को याद करना, शक्ति लेना, शक्ति देना, बाप दादा से रू रिहान करना, चंद्रमुखी योग, बाप और दादा दोनों की याद, फरिश्तेपन की स्थिति। दूसरा है सूरजमुखी योग। सूरजमुखी अर्थात केवल शिव बाबा की याद, ब्रह्मा बाबा नहीं, आत्मा समझ कर शिव बाबा को याद करना, आत्मक स्वरूप में टिक करके शिव बाबा को याद करना, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस बाबा के अलावा और कुछ दिखाई न पड़े। जैसे सूरजमुखी फूल होता है, जिधर जिधर सूरज जाता है वो ऑटोमेटिक घूमता जाता है उसी तरफ, ऐसे आपका मन और बुद्धि हमेशा शिव बाबा की तरफ लगी रहे, बस मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, बस उसको देखते रहो, शक्ति लेते रहो, विश्व को देते रहो। ये सूरजमुखी हो, केवल आत्मा और परमात्मा। तीसरा है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग अर्थात बाबा से, शिव बाबा से, शिव बाबा के समान की स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बाबा से मिलना और बाबा के साथ साथ विश्व की सेवा करना। बाबा आप सर्व शक्तिवान हो तो मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान बिल्कुल समानता की स्थिति में स्थित होकर मिलना। बाप जैसा बाबा है वैसे मैं आत्मा हूं, बिल्कुल समान, समान की स्थिति। और स्थिति है बाबा से लेते हैं, स्वयं में भरते हैं, विश्व को देते हैं। लेकिन ज्वालामुखी में समान रूप से मिलते हैं। समान रूप से मिलना और एक लेकर मिलना बहुत अंतर है। तो समान रूप से तो तभी मिल पाएंगे जब पहले इन दोनों स्थितियों का अभ्यास होगा। तब अगर ये दोनों स्थिति का अभ्यास कम तो समान रूप से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि समान रूप से मिलना अर्थात संस्कार बाप समान बन जाना। समान रूप से मिलने का सुख, शक्ति, नशा कुछ और होता है, उस रूप से मिलकर के भगवान के समान की स्थिति। तीसरा है अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति। अनादि और आदि, जितना आप इस स्वरूप के स्मृति सो स्थिति में होंगे उतना पुराने संस्कार स्वतः चेंज हो जाएंगे। ये अनुभव होगा कि मैं आत्मा यही हूं। तो जब अपनी ओरिजिनल स्थिति का अनुभव होता है और उसमें आत्मा टिकती है तो कीचड़ा ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो अनादि स्वरूप की स्मृति में जब आप आत्मा परम धाम में हैं, तो सोचो कैसे हैं। उस समय मैं आत्मा बिल्कुल बाप के समीप हूँ, भगवान के समीपता का सुख लो। मैं आत्मा बहुत चमकने वाली एक चमकदार आत्मा हूँ, भगवान की सर्व शक्तियां मुझ में समा रही है। आप वहां अपने को स्थित करो। लेकिन वो वही कर सकता है जो निरंतर आत्म अभिमानी की स्थिति में रहता होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी की स्थिति के लिए आत्मा की जो चार स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस का अभ्यास करते रहना। चारों स्टेज है, पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। ये आत्मा की चार भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं। देही अभिमानी अर्थात आत्मा देह का आधार लेकर कर्म कर रही है। देह में है लेकिन आधार लेकर कर्म कर रही है, भान आत्मा का है। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं। मालिक बनकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराना, ये कर्म क्षेत्र पर अभ्यास चलता रहे और ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इतना ले जाओ कि आपकी स्थिति बन जाए कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को आर्डर के प्रमाण चला रही हूं, करावन हार की स्थिति आ जाए। शुरू है करण हार की स्थिति, लेकिन लास्ट आ जाए करावन हार की स्थिति, बाप समान की स्थिति। करण हार का एग्जाम्पल है कमल का फूल। कमल का फूल सब जानते हैं रहते हुए न्यारा रहता है। आप भी इस प्रवृत्ति में, लौकिक प्रवृत्ति है वो अलग, आत्मा की प्रवृत्ति ये है, आंख मुख नाक कान हाथ पैर ये है, इस प्रवृत्ति में रहते हुए इस प्रवृत्ति से न्यारे। जब न्यारे बनोगे तो प्रभु के भी प्यारे बनोगे और सब आपको प्यार करने लगेंगे। कमल का फूल जब तक पानी के अंदर है तब तक कोई प्यार नहीं करता, लेकिन जब पानी से ऊपर आ जाता है, खिल जाता है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और वही फूल फिर देवताओं को या परमात्मा के ऊपर अर्पित करते हैं। पानी के अंदर है तब तक नहीं। तो जो ये कई घर वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले ये जो कंप्लेन करते हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं ऐसे हैं, वो उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आप इससे न्यारे नहीं बनते हो, उनसे न्यारे बन जाते हो। ये कलयुगी हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे, इनके हाथ का नहीं खाएंगे, ये ऐसा है वैसा ये करते। जब आपके अंदर ये वाइब्रेशंस आ गया तो उनको क्या मिलेगा सामने? वो आपको प्यार करेंगे? आप नफरत के वाइब्रेशंस दे रहे हो, वो प्यार करेंगे क्या? नफरत ही करेंगे। अगर आप इससे न्यारे हो तो आपको आएगा ये भी आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, बिचारी भगवान से बेमुख है, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, बाबा ये भी आपको पहचान ले, बाबा इसके जीवन में भी सुख शांति आ जाए। जब ये वाइब्रेशंस आपसे निकलेगा तब वो आपको प्यार करेंगे। गलती लौकिक वालों को नहीं दो, गलती आपकी है, नफरत के वाइब्रेशंस दे रहे हो, या नफरत के दे रहे हो या मोह के दे रहे हो। मोह बस, मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, बड़ा सहयोगी है, ऐसा है वैसा करके इस भान से चलोगे तो भी वो ज्ञान में नहीं चलेगा, क्योंकि देह में ही फंसा रखा है, बाबा की तरफ नहीं ले जा रहे हो। इसका ध्यान। तो पहला देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। अर्थात जब आप योग में बैठते हो तो आत्मा को इस देह के स्मृति की जरूरत नहीं है, सब क्रिया देह की ऑटोमेटिक चलेगी। आपको सब कुछ भूल कर बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना। आत्म अभिमानी विदेही। अर्थात जब आप बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चल रहे हैं, उस समय कोई न कोई सोमान स्वयं के मन में जरूर रखो। सोमान देह भान को हटा देगा, सोमान आपके संकल्प बोल कर्म को चेंज कर देगा। इसलिए कोई न कोई सोमान में जरूर रहो। चौथी बात है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो वहां शरीर नहीं है, इसलिए आपको जब चांस मिलता है, थोड़ा समय एकांत का मिलता है, टोटल शरीर से डिटैच हो जाओ। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं मेरा मीठा बाबा रहता है, बाबा ही हमारा संसार है, मैं यहीं की हूँ, यहाँ शरीर से संबंधित कोई चीज नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, मैं यहीं की हूँ, यही मेरा घर है। ये बार बार शरीर से डिटैच होकर जिसको बाबा कहता है डेड साइलेंस, ऊपर से देखो कि मेरा ये शरीर नीचे मरा पड़ा है, मैं आत्मा अपने घर में बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा के पास बैठी हूँ। फिर अभ्यास करो, मैं आत्मा बाबा के पास से आकर सूक्ष्म वतन होते हुए इस शरीर में प्रवेश किया है, ये शरीर चैतन्य होकर कर्म कर रहा है। ऐसे जब ये आत्मा की चारों स्टेजेस का अभ्यास करते रहेंगे तब आप अनादि स्वरूप में टिक पाएंगे, नहीं तो जाएंगे फिर तुरंत नीचे आ जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, और टिकेंगे नहीं तो प्राप्ति नहीं, सिर्फ आने जाने से थकावट लग जाएगी, मन थक जाएगा। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया है, अभी तो सब योग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई है बात ना? मेन फाउंडेशन मर्जीवा का, ये पहला फाउंडेशन पक्का करना, मर्जीवा अभी से रखना, फिर अशरीरी होने का अभ्यास। अच्छा, ओम शांति। Thank you.
की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। I'm trying.